गुरु शिष्य महाराणी की। শ্রী শ্রী গণতায় ভগবান কি, জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ কি, তাই গৌর প্রেমানন্দে হরে কৃষ্ণ। तो सब भक्तों का हम स्वागत करते हैं आज के इस रविवार के कार्यक्रम में। ऐसे कितने भक्त लोग हैं जो कि हर रविवार आते हैं? वेरी गुड। ऐसे कितने लोग हैं जो आज पहली बार आए हैं? ओके, आप सबका स्वागत। ताली बजा के नए लोगों का स्वागत कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया वो कभी कभार आते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। तो देखिए, हम सब लोग जिस देश में भाग्य से या दुर्भाग्य से पैदा हो गए, दुर्भाग्य उन लोगों को लगेगा जो अमेरिका जाना चाहते हैं, कहां पैदा हो गया हम, यहां तो सब जगह गंदगी गंदगी। और भाग्य उन लोगों को लगेगा जिन लोगों को इस देश की महिमा मालूम है। क्यों महिमा मंडित है? क्योंकि यहां पर भगवान स्वयं अवतरित हुए और यहीं पर सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है भक्ति करने की, तो उनको लगेगा मेरा जन्म जो है मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। और जो अभी स्वप्न में जी रहे हैं, जिन्हें लगता है कि अभी बहुत कमी है मेरे पास, मुझे और कुछ चाहिए, और सब बड़ा कुछ चाहिए, ऐसे लोगों को लगेगा मेरा दुर्भाग्य है कि मैं यहां पैदा हूं। तो चाहे हम अपने को दुर्भाग्यशाली माने या भाग्यशाली माने, फिलहाल तो हो गए, बस अब आ गए किसी तरह। तो मनुष्य जीवन जो है, इसके विषय में बताया जाता है कि हमको जो ये देह प्राप्त होता है, शरीर मिलता है, ये बहुत ही जिन लोगों ने पुण्य कर्म किए हैं और जो भाग्यशाली हैं और खासकर ऐसे प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ गए। प्रामाणिक संप्रदाय का मतलब मैं समझ जाता हूं, जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराते हो तो पहले उसका देखते हो कि ये रिकॉग्नाइज स्कूल है भी कि नहीं। ऐसे ही तो नहीं किसी ने अपने घर में स्कूल खोला हुआ, डिग्री वगैरह भी देते हैं कि नहीं। तो पता चले, एक बार हुआ इस प्रकार, कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज था बहुत बड़ा, काफी हजार बच्चे पढ़ते थे वहां, लेकिन बाद में पता चला वो तो MBBS की डिग्री दे नहीं सकता। तो कोर्ट में कैसे चले, कहीं ने सुसाइड कर लिया, 4-5 साल खराब हो गए जीवन। तो इस प्रकार अगर हम लोगों को प्रमाणिकता का मालूम है कि प्रमाणिक चीज है क्या, तो वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है चीज। उसी प्रकार समाज में जितने लोगों को भी मनुष्य देह प्राप्त हो गया, ये सब लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं अपने इस जीवन को, अज्ञानता में जो लोग हैं जिन्हें लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल खाओ पियो ऐश करो है, ऐसे लोगों को वो लोग प्रयास करते हैं इस जीवन में अधिक से अधिक खाओ पियो ऐश करो की जिंदगी जो जीना चाहता है, तो उसको क्या चाहिए सबसे ज्यादा, किस चीज की आवश्यकता है? धन की आवश्यकता है। लेकिन इस तरह की मेंटालिटी के लोग जो धन अधिक चाहते हैं, उनका उद्देश्य रहता है कि कंफर्टेबल जोन में रहकर जो चाहते हैं मन की इच्छाएं पूरी करें, खाएं पिए और बस, तो रोके टोके ना, और वो प्रयास भी करते हैं इस तरह जीने का। लेकिन कुछ समय के बाद जब इस प्रकार अपनी इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं, तो कुछ समय के बाद बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर्स उनको बोलते हैं आज के बाद आपका ये खाना बंद, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, अब हमेशा चेकअप कराते रहिए, कभी भी कुछ हो सकता है। क्योंकि जिनके अंदर रजोगुण अधिक होता है, ऐसे लोग हर समय अपने सेंसेस को, अपने इंद्रियों को, आंखों को, स्पर्श इंद्री को, जिह्वा इंद्री को, कान इंद्री को, है ना, हमेशा इसका जो भोजन है वो देना चाहते हैं हर समय। आंखों का भोजन क्या है? मिर्च नहीं, आंखों का भोजन है रूप का दर्शन करना, सुंदरता का दर्शन करना। इसलिए आंख हमारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्कैन करती रहती है, ठीक है ना, इसको कुछ ना कुछ देखना है। और फिर कानों का है शब्द, कुछ ना कुछ शब्द प्रवेश करने चाहिए, लेकिन कौन से शब्द हमें अच्छे लगते हैं? वो शब्द जो खासकर हमारे को हमारी तारीफ करते हैं। आपने दाल बहुत अच्छी बनाई आज, है ना, तो अच्छा लगता है कोई बोले इस तरह, चाहे बेशक उसमें नमक डालना भूल गए। तो हमारी तारीफ सुनना चाहते हैं हम लोग, और फिर कुछ म्यूजिक सुनना चाहते हैं, अच्छा म्यूजिक जो हमें अच्छा लगता है, तो कुछ ना कुछ शब्द चाहिए इसको। उसी प्रकार जिह्वा को भी क्या चाहिए? स्वाद चखना है इसको। और स्वाद चखने के लिए जिह्वा इतना मन के ऊपर वेग डालती है कि चलो चलो परांठे वाली गली चलो, नहीं तो बिट्टू टिक्की वाले के पास चलो, है? इस प्रकार एक वेग आता है, मन कहता है चलो चलो बस चलो जाना पड़ेगा, जब तक तुझे ये नहीं मिलेगा तब तक तेरा जीवन बेकार है। और इस प्रकार जो है स्पर्श इंद्रियां कुछ कोमल वस्तुओं को छूना चाहती है, ठीक है ना, नाक से हम सुगंध गंध को जो है लेते हैं, तो ये सेंसेस जो हमारी जो अधिक रजोगुण में है वो इनको ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहता है, इनका सेंस ऑब्जेक्ट देना चाहता है, भोगना चाहता है। इस प्रकार से नुकसान क्या होता है, जो ये जीवात्मा है, जो भगवान का अंश है, जो आत्मा है, ये आत्मा जब शरीर के अंदर आता है, इस देह के अंदर आता है, और खासकर इस मनुष्य देह के अंदर, तो जब इस देह में आकर भी वो केवल इंद्रिय तृप्ति करता है, तो उसके कई कई आगे के जन्म बुक हो जाते हैं कि ये भी कई के जन्मों तक आएगा, क्योंकि ये पांच काम करने के लिए उसको कुछ ना कुछ धन की आवश्यकता पड़ती है इन सब कामों को करने के लिए, और धन ज्यादा से ज्यादा दो नंबर से कमा जाता है, लोग बहुत ईमानदारी से तो बहुत कम कमा पाते हैं, और फिर धन को करने के बाद एकत्रित करने के बाद उसका उपयोग करने की जगह उसका दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, और दुरुपयोग करने से अधिक पापों की संख्या में वृद्धि होती है, और अधिक पापों को करने की वजह से हमारे आने वाले कई जन्म क्या हो जाते हैं, बुक हो जाते हैं। इस देह में आने के बाद केवल इसी देह के जो है हमें कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इससे पहले जो हो और योनियां होती हैं, या इसके बाद भी कई बार दूसरी गलत योनियां मिलती हैं, वास्तव में वो है खाओ पियो ऐश करो की जिंदगी, अर्थात भोग योनि। उसमें कोई मंगलवार सोमवार नहीं देखना, जो मर्जी खाओ जब मर्जी खाओ, कोई नराते नहीं रखने, कोई एकादशी नहीं रखने, उसमें कोई फैमिली प्लानिंग नहीं करनी। चाइना में तो बता रहे थे, कल हम लोग मायापुर में थे तो हमको चाइना की डिवोटी मिले, उनसे बात हो रही थी, कहते हैं अगर हमसे दूसरी संतान हो जाती है घर में तो हमको सरकार को टैक्स देना पड़ता है लगभग 50,000 रुपए, नहीं सॉरी $10,000 दिए थे, कितना होता है 5,00,000 रुपया टैक्स देना पड़ता है, देना ही पड़ेगा, एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है ये। तो इस प्रकार भोग योनियां जो हैं ये जानवरों वाली योनि, भगवान ने कहा खाओ पियो ऐश करो, अगर इसमें करना है इसमें कर लो जो करना है, तो डॉगी है, गधा है, घोड़ा है, बिल्ली है, शेर है, कबूतर है, वो खाओ पियो ऐश करो वाली जिंदगी, और बेचारे तड़पते रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, सर्दियां झेलते हैं, गर्मियां झेलते हैं, आक्रमण झेलते हैं, नाना प्रकार की अटैक्स को उनको वो करना पड़ता है, लेकिन जब इस प्रकार सब योनियों से निकलकर बाहर आते हैं और कभी देह प्राप्त होता है, वो भी कौन सा? मनुष्य, और वो भी कहां पर? भारत में। तो देवता लोग कहते हैं बहुत महान है ये लोग, क्योंकि देवता भी चाहते हैं कि हम लोग भारत में पैदा हों ताकि हम लोग भक्ति कर सके, शुद्ध भक्ति कर सके, क्योंकि देवताओं को भी इतना ज्यादा ऑपुलेंस प्राप्त है, ऐश्वर्य, कुछ भी खा लिए, कभी भी खा लिया, कुछ भी देख लिया, खूब जो है आनंद में रहते हैं हर समय, तो वहां पर उनको भगवान की याद ही नहीं आती। कहते हैं कि हे भगवान, हम आपको हमेशा भूले रहते हैं आपके चरण कमलों को, इसलिए अगर हमें अगला जन्म देना तो कहां देना? भारत भूमि में जन्म देना, क्योंकि यहां पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आप सुबह दोपहर शाम आवाज सुन लेते हो, कभी राम की, कभी कृष्ण की, कहीं कीर्तन हो रहा है, और अब तो हर जगह से हर जगह मंदिर बन गए इस्कॉन के, है ना, सुबह भी कीर्तन, शाम को भी कीर्तन, दोपहर में भी कथा, सुबह भी कथा, शाम को भी कथा, हर समय कृष्ण कथा चल रही है। तो हे भगवान, कहां जन्म देना मुझे? इस्कॉन टेम्पल के पास, ताकि क्या कर सके? भगवान की भक्ति कर सके। लेकिन बताया जाता है हम लोग जब अपने इन इंद्रियों को, वेग को रोक नहीं पाते, मन पर, बुद्धि पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो क्या होता है? हमसे पाप पूर्ण कार्य शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर जो ये 5 सेंसेस हैं, इनमें टॉप मोस्ट है जिह्वा, टंग अर्थात जीभ, अगर कोई व्यक्ति इस जिह्वा को कंट्रोल कर ले तो क्या होगा? वो बाकी इंद्रियों पर भी कंट्रोल कर लेगा, मन पर भी कंट्रोल कर लेगा। जिह्वा के 2 काम है, एक बोलना, दूसरा स्वाद का चखना। तो बताया जाता है जिह्वा के जो ये 2 काम है, सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो, अर्थात कि जब हम लोग जिह्वा को भगवान की सेवा में लगा दें तो क्या होगा? हमारा हृदय शुद्ध होने लगेगा, मन जो है शुद्ध होने लगे। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान के नाम कुछ ना कुछ तो बोलना ही है ना, सुबह दोपहर शाम, अपने काम की बात करी, उसके बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग यहां बताते हैं सब भक्तों के कुछ 16 माला का जप करना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं बोलते कि 16 के बाद नहीं करना चाहिए, 16 के बाद भी करना चाहिए। और अगर कुछ काम कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, घर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो भी साथ साथ क्या चलना चाहिए? जिस प्रकार कमरे में झाड़ू लगता है और मिट्टी, धूल, कूड़ा करकट बाहर हो जाता है, उसी प्रकार हमारा जो हृदय है, जो जन्मों जन्मों से नाना प्रकार की योनियों में घूम कर भटक कर केवल 4 ही काम करता रहा, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, उसके जो गहरे संस्कार पड़ गए ना, उन संस्कारों की धुलाई होती है। क्योंकि अगर ये निकलेंगे नहीं, ये छाप पड़ गई है हृदय में, ये साफ नहीं होगी, तो क्या होगा? जैसे ही मनुष्य देह में आए तो वही काम होंगे हमसे जो दूसरी योनि में हो। तो तपस्या करनी पड़ेगी, फालतू की बातों को बंद कर कर, फालतू की बात किसे बोलते हैं? प्रजल्पा किसे कहते हैं? जो बातें कृष्ण भक्ति से हटकर है, अब वो भी कमाल है प्रभु जी, हम तो पूरा दिन ही कृष्ण भक्ति की बातें करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, जैसे एक व्यक्ति ने बोला, कोई बताते हैं कि एक पेड़ के नीचे दो महिलाएं चुप बैठी हुई थी, कहता हो ही नहीं सकता, बात सही है, बैठ ही नहीं सकता। लेकिन अगर इस्कॉन के पेड़ के नीचे बैठी है तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, घर के आसपास बैठी है तो फिर हर चीज की चर्चा होती। कहने का क्या मतलब है कि भक्तों को चाहिए कि वो समझें इस बात की महत्व को, कि जीवा का प्रयोग अगर बोलने में करना ही है। कई लोग कहते हैं अच्छा हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम मौन रहेंगे, मौन व्रत भी करते हैं, एक दिन का, दो दिन का, पांच दिन का, सुना देखा है? प्रभुपाद जी कहते थे अरे मौन रह के गूंगे मत बनो, हम लोग उस तरह के मौनी नहीं बनना चाहते, हम तो खूब बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या बोलेंगे? बिल्कुल ठीक। और कृष्ण की कथा करेंगे, रोज एक दो तीन चार श्लोक पढ़ेंगे, क्या पढ़ा उसमें क्या अच्छा लगा उसको अंडरलाइन करेंगे, और जो हमारा सबसे प्रिय मित्र है उसको समझाएंगे या उससे बात करेंगे, खासकर वो जो वो भी मंदिर आता हो, और उससे पूछेंगे तुमने क्या पढ़ा भैया, तुम भी बताओ कुछ। मच्छतः मदगद प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्क्ष माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त हैं मुझे बहुत प्रिय हैं, क्यों? क्योंकि वो सदैव मेरे बारे में चर्चा करते रहते हैं। अब हम लोग उस स्तर के तो है नहीं कि हृदय में रोज कृष्ण की जो है सुंदर लीलाओं का उद्घाटन हो रहा है अंदर और हम वो चर्चा करें, वो नहीं कर सकते, उतने शुद्ध नहीं है। तो कम से कम पढ़कर, कृष्णा बुक पढ़कर, कृष्ण की गीता पढ़कर उसमें कोई लीला एक दूसरे से डिस्कस करें, बात ही करनी है ना, तो कृष्ण की कथा करें। तुष्यंति चा रमंति चा, मेरे भक्त लोग तुष्ट हो जाते हैं मेरे बारे में चर्चा करके। तुष्टि का मतलब सेटिस्फैक्शन, रमंति चा आनंद लेते हैं मेरी चर्चा में। आप बोलिए गुरु जी क्या, इससे भैया तो मैं वो एक मूवी आ रही नहीं उसकी बात करूं, क्रिकेट मैच की बात करूं, पॉलिटिक्स की बात करूं, उस व्यक्ति ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसके घर में ये हो गया, मंदिर में वो बात हो गई, इसने ये कह दिया, वो लोग तो पागल है, कुछ ना कुछ फालतू की बात करेंगे। लेकिन भक्तों को क्या चाहिए, वो क्या करें, भगवान की चर्चा करें, भगवान के पवित्र नामों का जप करें। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो जिह्वा है उसको आदत पड़ जाएगी, आदत तो ऑलरेडी पड़ी हुई हिलने की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नामों को वाइब्रेट करने की, चैंटिंग करने की आदत पड़ जाएगी। और बताया जाता है कि जिस प्रकार एक कंजूस व्यक्ति सुबह दोपहर शाम हर समय धन एकत्रित करता है, धन के विषय में सोचता रहता है और उसको गिनता रहता है सुबह से लेकर शाम तक, उसी तरह फिर भक्तों को चाहिए, चार कर ली, आठ कर ली, बारह कर ली, सोलह कर ली, बत्तीस कर ली आज, तो इस प्रकार आध्यात्मिक धन को भी बढ़ाए। तो इस प्रकार जिह्वा पे हमको बोलने का जो वो है कृष्ण कथा या हरिनाम, मौन रहने का फायदा नहीं, लेकिन मौन रहना फायदेमंद है उन लोगों के बीच में जो दुनिया भर की चर्चा कर रहे हैं, वहां मौन रहो, और कुछ करना हो तो कृष्ण चर्चा करो उनके सामने। जब कभी बहुत ज्यादा क्रोध आए तो उस समय मौन हो जाओ, ठीक है ना? कितने लोग क्रोध में मौन हो जाते हैं, हाथ खड़े कर, जब खूब क्रोध आता है, ठीक है, और कितने लोग उगल देते हैं, वो हाथ खड़े, सारे उगल देते। तो वो लोग बताओ जो मौन रहते हैं उस समय क्या फील होता है उनको?
वेरी गुड,
आप बताइए, आपने भी हाथ खड़ा किया और किसने किया था? हाँ जी, कैसा लगता है जब मौन रहते हैं आप? थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए सब लोग,
क्षमता होती है, देखते सामने वाला कितना बोल रहा है, बोल रहा
देखिए मौन रहने के लिए ना इसके लिए बहुत क्षमता चाहिए, बहुत प्रयास चाहिए, बहुत तपस्या चाहिए। बताते हैं जब कभी गुस्से हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, है ना। ये दो मिनट का ऐसा वेग होता है कि अगर निकल गया तो निकल गया, और अगर कुछ बोल दिया तो फिर दूसरे वाले का भी बढ़ जाएगा, आपका भी बढ़ेगा, फिर ऐसे ऐसे चलेगा, और फिर ये शब्दों में नहीं रहेगा, फिर हाथों में खुजली लग जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, है ना, और नाक फूल जाती है, सांस ऊपर नीचे होने शुरू होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और कई बार लोग हाथ यहां पर रख के हॉस्पिटल चले जाते हैं। कईयों का हरी बोल हो जाता है गुस्से में, लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो ये ज्ञान तो गुस्सा हमारा क्या है, मित्र है, शत्रु है, और उस समय हमको अपनी जीभ को बंद कर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति गुस्से में कुछ भी बोले वो पहले ही मान लेना चाहिए जो बोल रहा है गुस्से में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो बचे रहोगे, क्योंकि गुस्से में लोग उटपटांग बोलते हैं, जो ठीक है चाहे नहीं है सब बोलते हैं, ताकि वो लोग उस समय गुस्से में ऐसी बातें बोलना चाहते हैं ताकि आपको लगे कुछ, है ना। कभी देखा है कि कोई व्यक्ति गुस्से में किसी की तारीफ कर रहा और हंसते हुए गुस्सा कर रहा, होता है कभी, उल्टा होता है कभी। तो इस प्रकार अच्छे भले शक्ल का, अच्छे भले हृदय का, अच्छे भले मूड का बैंड बज जाता है, और व्यक्ति के असुर का रूप ले लेता है। तो उस समय जिह्वा को बंद करना चाहिए। तो जिह्वा का प्रयोग हमें सदैव भगवान की चर्चा, भगवान की कथा करने में करना चाहिए, हरि नाम लेने में करना चाहिए। दूसरा है स्वाद, लेकिन उससे पहले जिह्वा कई बार हमारा ऐसा भी काम करती है, जैसे कुछ सत्य बोलना है, इसका उपयोग यह भी है कि सत्य बोलो सदैव, लेकिन कई बार भक्ति के लिए या ऊंचे लाभ के लिए, अपने हित के लिए, आत्मा के लाभ के लिए झूठ बोलना वो नहीं माना जाता, क्या झूठ नहीं माना जाता। जैसे आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है, मुझे बचा लो मुझे बचा लो, अचानक पर्दे के पीछे छुप गया। अरे इसको तो मैं जानता हूं, ये तो हमारे यहां रहते हैं, बड़े शरीफ आदमी, क्या हो गया। अचानक दूसरा कहा, कहां है वो, चाकू लेके हाथ में, कहां है बता, कहां पे है, यहां पीछे छुपे। तो क्या कर सकते थे, उसको बोल सकते थे इधर से भागे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कई बार किसी की प्राणों की रक्षा करने के लिए या किसी लाभ के लिए, जैसे कई बार वाइफ या हस्बैंड प्रेरित होकर कुछ दान देना चाहते हैं, तो वाइफ अगर हस्बैंड कुछ दान देना चाह रहे हैं तो क्यों दे रहे हो इतना, कहां दे रहे हो, क्या मतलब है ये सब, है ना, खबरदार अगर कुछ दिया तो। या कभी वाइफ देना चाहती है तो पति रोक देता, क्या मतलब है तुम्हें, मालूम है ये है वो, छोड़ो बंद करो। तो कई बार पति या पत्नी लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा रोक लेते हैं, छुपा लेते हैं, बचा लेते हैं, और भगवान की सेवा में कहां गए वो पैसे, नहीं खर्च हो गए, अच्छा खर्च हो गए, तो ऐसे झूठ झूठ नहीं कहता। तो कहने का क्या मतलब है, सत्य बोलना चाहिए। और कई बार हम लोग थोड़ा कड़वा सत्य भी बोल देते हैं, कड़वा सत्य मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति अगर सोते समय खर्राटे मारता है, सारे मारते हैं, लेकिन आप 10 लोगों के बीच में बोल रहे हो, बाबू जी क्या आप तो इतने तेज खर्राटे मारते हैं, सत्य बोल रहा है लेकिन ये मानेगा तो सही, कोई बात नहीं, लेकिन अपमानजनक सत्य है, उससे उसको ठेस पहुंचे। तो सत्य इस प्रकार बोलना जिससे सामने वाले को बुरा ना लगे, जैसे एक बार किसी ने बोला कि एक व्यक्ति की आंख खराब थी, तो व्यक्ति ने बोला अरे तू काना कैसे हो गया, ऐसा नहीं बोला, कैसे पूछा उसने, कहते कि काने को काना मत बोल नहीं तो काना जाएगा रूट, काने से ये पूछ लो तेरी कैसे गई फूट। है ना, ये किसे सुनाया था, मतलब कहने का मतलब है कि सत्य बोलना है, कुछ पूछना है तो उसको बड़े पॉलिश वे में पूछ सकते हैं, जिससे कि सामने लोगों को बुरा ना लगे। हम बोलते हैं जी मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, जो भी इतनी असली बात मुंह पे बोल देता हूं, ये बड़ा खतरनाक सिस्टम होता है। लोग अपने आप को वो समझते हैं कि यस आई एम द मैन ऑफ प्रिंसिपल, नहीं गड़बड़ हो जाती है, हम लोग कई दुश्मन बना लेते हैं अपने, ज्यादा दुश्मन बन गए और दो चार छह लोग उसी की मेंटालिटी के लोग उसकी प्रशंसा कर देंगे, यस तुम हो बलिया मुंह पर बोल देते हो। तो कई बार समय काल परिस्थिति के अनुसार देखा जाता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बोलनी पड़ती है मुंह पर, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो रोकनी पड़ती है, दूसरे ढंग से पूछी जाती है। तो ये सब जीवा की तपस्या है, बोलने की तपस्या है। तो हमें इस सब को ठीक करने के लिए हमें चाहिए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करें, कीर्तन करें। और जब कभी ऐसी परिस्थितियां आए, जब आपको प्रवोक किया जा रहा है, आपको क्या कहते हैं इसे, प्रवोक प्रसारित किया जा रहा है, उत्तेजित किया जा रहा है, तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए, शांत रहकर हृदय में भगवान का नाम जपना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर मैं कुछ बोलूंगा इस समय उसका लाभ होगा या नुकसान होगा। अधिकतर समय नुकसान होता है, तो कुछ समय रुककर थोड़ी देर बाद, एक घंटे बाद, दो घंटे बाद बात कर सकते हैं व्यक्ति से आराम से, ठीक है ना जी। और दूसरा जीवा का क्या काम है, जो भी को मिलेगा 15 मिनट में भोजन करना, तो बताया गया है तीन प्रकार का भोजन होता है, एक तामसिक भोजन, राजसिक भोजन और सात्विक भोजन। जो तामसिक भोजन है वो बासी और काफी दिन पुराना, मांस इत्यादि जो मतलब एकदम बेकार का भोजन है, इस तरह का भोजन तामसिक कहलाता है। तो भोजन इस तरह का जो तामसिक वृत्ति का भोजन है जो व्यक्ति करते हैं, तो उनकी चेतना भी तामसिक रहती है, तमोगुण में अधिक रहते हैं, ज्यादा सोएंगे और बहुत दिक्कत होगी उनसे। दूसरा भोजन बताया गया राजसिक भोजन, ये तीखे अधिक मिर्च वाले अचार जिसमें हमारी जिह्वा को स्वाद मिलता बहुत अधिक, तो इस तरह का भोजन क्या करता है, हमारे अंदर रजोगुण की वृद्धि करता है जिससे क्रोध आता है, जिह्वा बहुत ज्यादा चलती है उससे हमारी। तो आपको भी मैं कंट्रोल करना चाहता हूं लेकिन कंट्रोल ही नहीं होता मुझसे, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जिह्वा पे कंट्रोल नहीं, और जिह्वा की कंट्रोल ना होने के कारण कुछ भी खा लिया, कभी भी खा लिया और कहीं भी खा लिया, तो जो अन्न बाहर ग्रहण करते हैं तो बताया जाता है बनाने वाला है ना, जो व्यक्ति जो बना रहा है उसकी जो चेतना है वो भी उस अन्न के अंदर ट्रांसफर होती है, और उस जो व्यक्ति ग्रहण करता है उसको उसकी चेतना पे प्रभाव पड़ता है, तो जो उसके अवगुण थे वो भी उसके अंदर आ जाते हैं और उस वजह से उसके अंदर रजोगुण की और वृद्धि हो जाती है, जिससे वह व्यक्ति कभी शांत नहीं रहता और उसके अंदर इच्छाएं बढ़ जाती है। तो राजसिक भोजन जो है वो शुरू में अच्छा लगता है लेकिन बाद में उसके नुकसान झेलने पड़ते हैं। तीसरा है सात्विक भोजन, ये वो भोजन है जो कि कम मिर्च वाले, कम नमक वाले, रसीले जूस भरे ना फ्रूट्स सब्जियां, लेकिन किस तरह की, जिसमें नमक मिर्च नहीं होता, देख ये सात्विक भोजन कहा गया। तो व्यक्ति को इस प्रकार का भोजन करने से हो सकता है शुरू में फीका फीका लगे, लेकिन इससे व्यक्ति की उम्र ज्यादा बढ़ती है, है ना, और उसके अंदर उसके शारीरिक विकास भी बहुत सुंदर ढंग से होता है, बीमारियां कम लगती हैं, ठीक है ना। तो ये सात्विक भोजन है। एक होता है विशुद्ध सत्व, ये इन तीनों गुणों से पूर्ण होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल, दिव्य। और ये होता है वो भोजन जो सात्विक भोजन है, लेकिन जिसे भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल डालकर पहले अर्पित किया गया है, ना ये तांसिक है ना राजसिक है और ना ही यह है शुद्ध सत्व, शुद्ध सात्विक भोजन। और इसको ग्रहण करने से हमारे हर प्रकार के दुख तकलीफें, हमारी चेतना का शुद्धिकरण इसी से होता है, इसी प्रकार के भोजन से। तो जब हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं तो प्रसाद हमारे जीवन में, हमारे भक्तिमय जीवन में, हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब प्रभुपाद जी विदेशी धरती पर थे तो वहां पर जो लोग गलत परिस्थितियों में रहते थे, चरस गांजा लेते थे, सारे उल्टे काम करते थे, तो प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे उनके सामने, वो कीर्तन में वो भाग लेते थे और उनको रसगुल्ला खिलाते थे, प्रसाद अपने हाथ से बनाकर खिलाते थे। प्रसाद खाकर और हरिनाम सुनकर उनका हृदय शुद्ध होने लगा और वो लोग जो हैं भक्त बन गए। उनको प्रभुपाद जी ने दीक्षा दे दी और फिर प्रभुपाद जी ने कहा इसके यही नियम है, मांसाहार नहीं करना, किसी प्रकार का नशा भी नहीं करना, किसी प्रकार का अवैध संबंध भी नहीं करना और किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, क्योंकि ये धर्म के चार स्तंभ है, अगर कोई इनको करता है तो उसे धर्म के स्तंभ गिरते हैं और व्यक्ति को निश्चित रूप से बहुत यातना मिलती है और नरकों में जाना पड़ता है। खाओ पियो ऐश करो की मेंटालिटी जानवरों की योनि में थी, वहां कर कर आए सब कुछ, अभी ये किस लिए मिला है? भगवान की भक्ति करने के लिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, ये जो जीवन मिला है भक्ति के लिए मिला है, तपस्या करने के लिए मिला है। केवल एक जीवन तो तपस्या करनी है, अभी तक जितना खाया पिया नो प्रॉब्लम, भगवान का नाम लो सब भगवान माफ कर देंगे, लेकिन अब मैं तपस्या करूंगा या करूंगी, अब मैं गाय गधे घोड़े की तरह सड़कों पे नहीं खाऊंगा, कुछ भी मिल रहा है कहीं भी खा लिया, नहीं। क्यों? कि किसी के भी हाथ नॉन डिवोटीज के हाथों का बना खाएंगे तो उससे हमारी चेतना दूषित होगी और चेतना जब दूषित होगी तो शुद्ध चेतना जब तक नहीं होगी तब तक क्या हम नाम लेंगे, तो हृदय हमारा हमेशा दूषित रहेगा। तो इसलिए समाज में बाहर जो है जितने भी चीजें हम देख रहे हैं या खाने पीने की चीजों को देख रहे हैं, ये सब हमारे मन को हमारे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करता है और हमारा मन बेचारा हमारे हाथ में तो है ही नहीं, इस पे हमारा कोई कंट्रोल है? मन में कोई बस चलता है हमारा? जो मन कहता है हम वो करते हैं, है कि नहीं? तो ये सबसे बड़ी विडंबना है, दुख की बात है कि जो हम मन में आ रहा है हम वो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम मन के गुलाम हैं और मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि ये हमेशा हमको वो सारी चीजें बातें बताएगा, वो चीजें की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि ये कई के जन्मों से ट्रेन होकर आया है ये मन। इसलिए जब हम इसके हाथों अपना सारी लगाम दे देते हैं, अपनी इंटेलिजेंस दे देते हैं, तो कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मन जो कहता है वो कर बैठते हैं। हमें लगता है परमात्मा की आवाज आ रही है, मेरे परमात्मा ने सैंक्शन कर दिया अंदर से, मैंने अभी चार रसगुल्ले खाए, दो का मन और कर रहा है, तो मेरा मन मतलब परमात्मा कर रहा है, कहीं लगता है परमात्मा बोल रहे हैं। अरे नहीं, ये हमारा गंदा दूषित मन है जो हमको कुएं में ढकेलने के लिए अंदर से गलत गलत थॉट देता है और हम मन के धरातल पर सारे काम करते हैं। लेकिन अगर हम लोग भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, रेगुलर भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, तो जैसे कोई थॉट आएगा, जैसे कोई विचार मन में आएगा, उस विचार को तुरंत हम लोग सबसे पहले कहां भेजेंगे? कहां भेजेंगे? सबसे पहले वो मन में आएगा विचार, है ना? विचार के बाद उसको हम भेजेंगे अपनी बुद्धि के पास। भैया बताओ ये विचार कैसा है? विचार आ रहा है कि आज मैं मूवी देखने जाऊं, कैसा है? सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे मूवी की। अच्छा, तो ये विचार आया कहां से? मैं कुछ दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। अच्छा, ये दोस्त कैसे थे? गंदे थे, बाहर के लोग हैं, फालतू की बातें करते रहे। ओके, तो वहां से गलती शुरू हुई ना, कि लोगों का, गलत लोगों का एसोसिएशन किया आपने। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर जी उन्होंने बताया कि एक मूवी बहुत अच्छी चल रही है आजकल। ओके, क्या है उस मूवी में? कुछ नहीं, ऐसे है वैसे है ये। अच्छा, तो क्या आपके लिए देखने के लिए है ये? नहीं, 3 घंटे का सुना, अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। अच्छा, मनुष्य जीवन एंटरटेनमेंट के लिए मिला है? तो फाइन देना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ेगा। वो तो टिकट के साथ लगा होता है, देना होता है, नो प्रॉब्लम। नहीं, वो एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं। यहां पर जिस चीज के लिए शरीर मिला था, मान लो आपको बॉर्डर पे खड़ा गया, बंदूक लेके खड़े हो भैया, कोई आए तो मार देना, ठीक है जी। अच्छा, फिल्म देखा था, आप एंटरटेनमेंट करने चले गए, उधर से आपके बॉर्डर के अंदर घुस गए लोग, आप तो क्या करेंगे? आपको देंगे मरणोपरांत, मतलब आपको पहले गोली मारी जाएगी, ठा जेल भेजा जाएगा, फिर आपको देंगे गिफ्ट, ये लो नरक लो। नहीं समझे? तो जिस काम के लिए शरीर मिला है उसका इस्तेमाल वही तो करना चाहिए ना। जो जॉब मिली है हमें करने के लिए, वो करना चाहिए ना। मनुष्य देह जो प्राप्त हुआ है वो केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। एंटरटेनमेंट तो बहुत खतरनाक टैक्स है। शास्त्रों में बताया, भगवत गीता नहीं सॉरी भागवतम में, कि जो लोग इस प्रकार शास्त्रों के विपरीत चलते हैं तो उनको यहां से वहां तक कैसे लेके जाते हैं? कहां से? यहां से कहां तक? यम लोग। 3 लोग आते हैं, यम के 3 दूत, और उस व्यक्ति की सबसे पहले उसकी सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं, मन बुद्धि अहंकार के साथ ही आत्मा होता है ना, उसको शरीर से खींचते हैं, बाहर निकालते हैं, बहुत दर्द होता है उसको, रोता है, आ बचाओ, और तुरंत उसको एक शरीर देते हैं, यातना शरीर। वो शरीर तो रह गया वहां पर, और निकालने के बाद उसको कहते हैं, चल, इतने प्यार से नहीं बोल, उनका हंटर होते हैं आप, बड़े समझ। और जो रास्ता है 99 माइल्स ने योजन 99 योजन 99 × 8 करो कितना होगा? 720। ठीक है, आप लगा लेना, आपको तय करना है, अमर को तय करना है, बाद में देखेंगे। तो उतना लंबा डिस्टेंस होता है और वो पूरे का पूरा रेत होती है रास्ते में, और ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक, मतलब सूर्य का प्रकोप ऊपर से रेत को एकदम गर्म करके रखता है, और नंगे पैर, आपको रिबॉक का शूज नहीं देते, आओ अपने शूज ले लो जल्दी से, कौन से 3000 के थे पहन लो, अब चलो, ऐसा नहीं होता, नंगे पैर दौड़ाते हैं उसमें, और हंटर लेते हैं साथ में, अभी नहीं मारेंगे, पीछे कुत्ते छोड़ते हैं, पागल कुत्ते, खतरनाक कुत्ते जो काटते हैं पीछे से, कहानी नहीं सुना रही, सत्य लिखा है भागवतम पंचम स्कंद, और वो काटते हैं, वो जो काटते हैं तो उसको अपना एक एक किया वो पाप याद आता है, छोड़ो ना किसने देखा है, अभी तो कर लो, वो भी याद आता है, यहां मुझे कोई नहीं देख रहा वो भी कर लेता हूं, ये पाप भी याद आता है। दोस्त कह रहे थे खा लो खा लो, अरे जबरदस्ती करता है, खा, चलो खा लिया, वो पाप वो भी याद आता है, मेरी क्या गलती थी उसने मुंह में डाल दिया वो पाप भी याद आता है। इस प्रकार जितने पाप जानकर और अनजाने में किए हैं सारे पाप तब याद आते हैं जब वो पीछे से डॉगी काटते हैं उसको, और वो बेचारा नीचे से पांव जल रहे हैं, पीछे से कुत्ते काट रहे हैं, वो धराशा गिर जाता है नीचे। यमराज के दूतों को बड़ा तरस आता है, वो पानी डालते हैं इसको, उठो, वो नहीं उठता। वो हंटर लेते हैं, जोर से मारते हैं, उठ जा, फिर उठता है वो, कहता फिर भाग, फिर कुत्ते पीछे पड़ते हैं। इस प्रकार कहीं पर कोई प्याऊ नहीं लगा होता कि कहीं पानी पी ले, कहीं पर कोई शेड नहीं बना होता कि यहां पर थोड़ी देर बैठ जाए, कोई विश्राम स्थल नहीं बना होता, कोई पिट्ठू नहीं मिलता कि आओ जी बैठो 400 रुपए लगेंगे वहां से छोड़ देता हूं। भाग कर ही तोड़ना पड़ता है। और अभी ये तो सैंपल था, अभी तो वो जा रहे हैं उधर किधर, हाँ अभी तो सजा मिलनी है वहां पर, ये तो ट्रेलर है, वो 3 घंटे में दिखाते ना, बीच में कहते हैं ट्रेलर दिखाते हैं, जो एंटरटेनमेंट किया जो उसका टैक्स ये है। हम कहेंगे प्रभु जी ये तो बड़ा मुश्किल है, आपने तो हमारी फिल्में बंद करवा दी, हमारा ये बंद नहीं, ये जन्म मिला है हमें भक्ति करने के लिए। आपको क्या लगता है यहां पर एंटरटेनमेंट नहीं है क्या? यहां पर स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है, इतनी सारी वीडियोज हैं, इतनी सारी मूवीज हैं कृष्णा के ऊपर, स्टोरीज हैं, कथाएं हैं इतनी सुंदर सुंदर, भक्तों के बीच में हम आते हैं, हम भी करते हैं खाओ पियो ऐश करो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बनाओ बढ़िया बढ़िया चीजें, पहले भगवान को भोग लगाओ, कृष्ण के लिए बनाएंगे। जो आपको खाने का मन कर रहा है जाओ मार्केट में पहले लेकर आओ, बनाओ बढ़िया ढंग से और भगवान की तुलसी डाल के भोग लगाओ, पहले कृष्ण खाएंगे और फिर हम प्रसाद खाएंगे। आप भी पियो जो पीना चाहते हो, ठीक है ना? अंगूर का सड़ा हुआ रस पीते हैं लोग जमीन में दबा के, ऐसे बनती है। आप बिना दबाए पी लो ना, क्या दिक्कत है? अंगूर का जूस निकाल के वैसे पिलाओ, भगवान को पिलाओ, खुद भी पियो, क्यों सड़ा के पी रहे हो? ज्यादा सड़ा हुआ पीना तो नाला इतना बड़ा बहरा। अगर कुछ ऐसी है तो उधर से पी लो, नहीं जी जिससे चक्कर आते हैं वो पीनी है, तो एक थप्पड़ खा लो किसी का, गाली दे दो, चक्कर आ जाएंगे। वैसे चक्कर आए होते हैं लोगों को पैसे कमाने में, दिन में भी तारे दिख रहे होते हैं आजकल, इतनी बुरी स्थिति है। लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से इन सब का उपभोग कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाइए, खाइए पिए, फीस्ट चलती रहती है सुबह शाम, और डांस कीजिए, खूब कीर्तन कीजिए भगवान के सम्मुख, इससे ज्यादा एंटरटेनमेंट है कहीं? बाहर एंटरटेनमेंट के लिए पैसे देने पड़ते हैं, डिस्को में जाना है कहीं जाना है, हर जगह पैसे लगते हैं, और साल में 2 साल में कहीं शादी में जाते हैं, थड़कों में थोड़ी देर हाथ हिलाना होता है, कमर कुमर दर्द हो रही होती। हमारे भक्त लोग कितने कितना नाचते हैं हम पर आके, कोई दर्द नहीं है, सब ठीक चल रहा है, हेल्थ भी मेंटेन है, सब कुछ मेंटेन है। तो असली आध्यात्मिक आनंद यहां है, और यही आनंद लेते लेते हम लोग कब नाचते नाचते भगवान के धाम चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और अगर यहां नहीं नाचे तो माया नचाएगी, और माया नचाएगी तो पाप होंगे, पाप होंगे तो वही तीनों आएंगे और वो बहुत मारेंगे। थोड़ी सी तपस्या तो है ना, प्रभु जी मन तो करता है भक्ति करने का, लेकिन सारे दोस्त ऐसे हैं, जिस ऑफिस में जाता हूं वहां लोग ऐसे हैं, मेरी पड़ोसने ऐसी हैं, हमारे सारे रिलेटिव्स ऐसे हैं, सब लोग बड़ी तादाद में नर्क की तरफ जा रहे हैं, तो कई बार मन करता है कि मैं भी, क्यों भाई तुम्हारा मन क्यों कर रहा है? सब लाइन लगा के कुएं में कूद रहे हैं, तुम मत कूदो भैया। तो इस प्रकार हमारा जो ये मूल्य जीवन है इसको हम बस आस पड़ोस को देखकर ही खराब कर देते हैं। कितनी अजीब बात है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि हम लोगों को फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से माता के गर्भ में 9 महीने के लिए उल्टा टंगना पड़ेगा, जन्म के कष्ट बताते कि इतने जर्म्स काटते हैं वहां, इतने कीटाणु काटते हैं, और ऊपर से कोई काट ले किसी को कटा हो, किसी को नींबू निचोड़े उस पर, तो वो सब बहुत दर्द करता है बच्चे को। अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं बस बाहर आके आपके भजन करूंगा, लेकिन फिर सब भूल जाता है। माता पिता की ड्यूटी है बच्चों को बताना कि बेटा तुम शरीर नहीं आत्मा हो, देह मिला है हमें भगवान की भक्ति करने के लिए, इस जीवन में हम लोगों को जीवन यापन करना है, तो जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है उस सामान को लेना है, बाकी समय हमें चाहिए कि भक्ति में लगाएं। इसलिए नारद जी जो कहते हैं कि वास्तव में धन्य है वो लोग जिनके पास बहुत अधिक धन नहीं है, और प्रभुपाद जी प्रपट में लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि ऐसे लोगों के घर में साधु आसानी से आ जाते हैं, उनको कोई डर नहीं लगता। बड़े घरों में तो गार्ड भी होंगे, चार छह कुत्ते भी होंगे, बाहर लिखा भी होगा कुत्तों से सावधान, कुत्ते ना भी हो तो भी लिखा होता कुत्तों से सावधान, क्योंकि मालूम पड़ चुके था कुत्ते कौन है। वास्तव में जो भक्ति नहीं कर रहा पशु समान है। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग अधिक से अधिक भगवान के भक्तों का संग करें, और अधिक सुंदर रूप के चक्कर में, अधिक धन के चक्कर में, अधिक विद्या के चक्कर में, अधिक भौतिक संपदा इकट्ठी करने के चक्कर में अगर हम टाइम वेस्ट कर दिया तो वो टाइम दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी के पास सुंदरता है, धन है, ठीक है, विद्या है, और उसने उसे भगवान की सेवा में लगा दी, तो ये और भी अच्छा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इन दो इंद्रियों को ठीक प्रकार से, मतलब इस इंद्रिय का काम जो दो काम है, बोलना तो कृष्ण के विषय में बोलना, और अगर खाना तो क्या, कृष्ण प्रसाद खाना, और ये करने से धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, और बाकी फिर दूसरी जो इंद्रियां हैं वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे, मन भी कंट्रोल में हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। इसलिए भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, अगर कोई मुझे प्रेम पूर्वक पत्ता पुष्प फल इत्यादि भी भोग लगाता है, प्रेम पूर्वक, उसके अंदर प्रेम होना चाहिए। क्या प्रेम, कि ये मैं भगवान के लिए बना रही, कृष्ण से खाएंगे, तो हृदय से जब भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान उसको निश्चित रूप से उसको भोजन को ग्रहण करेंगे और आपके लिए प्रसाद रूप में छोड़ देंगे। प्रसाद का मतलब ही होता कृपा। तो जब हम लोग इस प्रकार से ग्रहण करेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मुझे अर्पित भोजन को प्रसाद रूप में खाते हैं। अन्य लोग जो दूसरे लोग हैं जो केवल अपने मजे के लिए खा रहे हैं, दुकानों में खड़े होकर या अपने लिए मंगा मंगा कर अपने भोग के लिए खा रहे हैं, हो सकता है वो वेजिटेरियन हो, बट स्टिल वो क्या है, पाप है, क्योंकि भगवान को अर्पित नहीं हुआ पहले। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग सदैव प्रयास करें कि भगवान का ही प्रसाद पाए, ठीक है। घर में अपने इसी प्रकार करें, भोग लगाएं, परिस्थितियां विपरीत हों, बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो हफ्ते में दो दिन, तीन दिन, चार दिन बिना प्याज लहसुन के बनाएं तब खाएं, तब भोग लगाएं और तब ग्रहण करें, धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाएं, दिनों की संख्या, तो इससे हमारी चेतना शुद्ध होगी, ठीक है। हरे कृष्ण। तो तीन चार अनाउंसमेंट्स भी आपके लिए, एक तो 8 मार्च को गौर पूर्णिमा, भगवान चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे, बोलो गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, और उस दिन आप सब लोग जो हैं भगवान के लिए भोग बनाकर लेकर आ सकते हैं, 56 भोग किसी भी तरह का ला सकते हैं, और 24 मार्च को रथ यात्रा की जाएगी इस्कॉन की, बहुत बड़ी रथ यात्रा का फंक्शन किया जाएगा, गौर पूर्णिमा जो है चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे, जिस प्रकार हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं उसी प्रकार हम लोग गौर पूर्णिमा मनाते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, कोई अंतर नहीं है भगवान के अवतारों में। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे भगवान कृष्ण, और आज से ठीक 500 साल पहले नदिया जिले में, नवदीप में, सॉरी मायापुर में, वेस्ट बंगाल, और राधा कृष्ण के ही अवतार थे वो, युगल अवतार, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। और चैतन्य महाप्रभु ने ही भविष्यवाणी की थी कि पूरी पृथ्वी पर, पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरना, कि पृथ्वी पर जितने भी नगर और गांव हैं हर जगह मेरे नाम का प्रचार होने वाला है। और चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले चैतन्य महाप्रभु की जो प्रेडिक्शन थी भागवतम में 11वें स्कंद में, कृष्ण मण तुषा कृष्ण सांगु पांगुस्त पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेर दशा, कि भगवान कृष्ण आएंगे लेकिन वो कृष्ण वर्ण के अर्थात सामने नहीं होंगे, अब गौर वर्ण में होंगे। और यज्ञ संकीर्तन, यज्ञ करेंगे कौन सा, संकीर्तन यज्ञ, साथ में मिलकर कीर्तन करने की विधि हमें देके जाएंगे। और कौन कौन इसमें भाग लेगा, यजंति ही सुमेधसा, जो बहुत बुद्धिमान होंगे वही चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्ण आंदोलन में भाग लेंगे। तो आप सब लोग क्या है, बहुत बुद्धिमान है, क्या है, अपनी अप्रिशिएशन सुनना नहीं चाहते। हाँ जी,
कहाँ पर है मंदिर वाला या किसी को पर्सनल डिसाइड हो गया?
सात मार्च को एक हरिनाम संकीर्तन भी है, एक दिन पहले गौर पूर्णिमा से। यह हरिनाम संकीर्तन राजधानी इनक्लेव से है, सुबह शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो ये वही विधि है जो चैतन्य महाप्रभु ने दी है हरिनाम संकीर्तन की। तो ये राजधानी इनके पीतमपुरा में है, रानीबाग के पास। तो आप सब लोग उसमें आ सकते हैं। तो ये संकीर्तन विधि के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने इतनी सुंदर और इतनी सरल विधि दी कि हरे कृष्णा कीर्तन करते करते हमारे सारे कलमश, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और कई कई जन्मों तक योग साधना के द्वारा भी जो कोई प्राप्त नहीं कर पाते थे, भगवान के चरणों का भी ध्यान करते करते नहीं देख पाते थे, ऐसे योगी विफल हो जाते थे, या यज्ञ करने वाले यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे, तो ऐसी कोई विधि जो है इस युग में जो है काम नहीं आएगी, केवल हरिनाम संकीर्तन। इसलिए सभी ग्रंथों में, चाहे किसी भी धर्म के हों, उसमें भी भगवान के पवित्र नामों का ही जप करने की विधि बताई गई है। तो हमें चाहिए कि हम सब लोग भगवान के नामों का जप करें, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसको? महापुरुष, महापुरुष ने 12 महाजन हैं, तो उनमें से यमराज जो है वो भी एक महाजन है। महाजन का मतलब वो लोग जो कृष्ण को तत्व से जानते हैं, कृष्ण के वेदों के सार को जानते हैं और उसका प्रचार करते हैं या अपने जीवन में उतारते हैं, आचार्य कहलाते हैं। इसी प्रकार 12 महाजनों में जैसे शिव हैं, प्रहलाद हैं और नारद जी हैं, जनक महाराज हैं, उसी प्रकार यमराज भी हैं, ये भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो इनको इसलिए महाजन कहा जाता है, ठीक है।